बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुन गुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना, गुण प्रभु के गुन गुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। संसार सागर की लहर है, साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है, हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना, हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना।
पीछे वाले सामने आ जाएंगे, बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। तो कल हमने सेल्फ को समझा था, उस सेल्फ की ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है, क्या मूल संस्कार है, उसको समझा था। तो वो समझने का तात्पर्य ये था कि अब जब हमने सेल्फ को, सोल को, रूह को, आत्मा को समझ लिया है, तो अब जीवन उस कॉन्शियसनेस के साथ जीना है। अब तक तो क्या हो रहा था, दर्पण के सामने जाते थे, इसकी इमेज वहां बनती थी और उसको देखकर कहते थे ये मैं हूं, है ना। लेकिन अब पता चला ये मैं नहीं हूं, मैं तो यहां विराजमान हूं और ये छवि दिख रही है दर्पण में वो मुझ आत्मा का कॉस्ट्यूम है, शरीर है, व्हीकल है। तो अब तक हम कॉस्ट्यूम के, व्हीकल के, शरीर के, बॉडी के कॉन्शियसनेस में जी रहे थे। लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चल गई तब उस सच्चाई को जीना है, सोल कॉन्शियस होकर जीना है। और सोल कॉन्शियस होकर जीने का सिंपल मीनिंग है कि कर्म क्षेत्र में जो हम एक्टिंग कर रहे हैं, सोल एक्टर है और ये कॉस्ट्यूम पहना है, ये सृष्टि ड्रामा का स्टेज है, हम सब एक्टर्स पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो जब हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, चाहे जो भी पार्ट मिला है हमें, चाहे जो भी रोल मिला है, चाहे जो भी कॉस्ट्यूम मिला है, मेल का, फीमेल का, काला, गोरा, वट एवर इट इज कॉस्ट्यूम, तो चाहे जैसा भी कॉस्ट्यूम मिला है, ड्रेस मिली है, चाहे जैसा भी रोल मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, जिम्मेवारियां मिली है, वो कैसे जिएंगे, कैसे निभाएंगे, मैं आत्मा, मेरी क्वालिटीज जो है उसको रेडिएट करते हुए, इसको कहते हैं सोल कॉन्शियस होकर जीना। क्योंकि एक एक्टर भी जब रंगमंच पे आता है तो उसको तो पहली बनी बनाई स्क्रिप्ट दे दी जाती है, उसको थोड़ी सोचना है कि मुझे क्या बोलना है, उसको थोड़ी सोचना है कि मुझे कौन सी ड्रेस पहनना है, उसको थोड़ी सोचना है कि आपको कौन सा पार्ट प्ले करना है, वो तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पर उसको क्या सोचना है, उसको ये सोचना है आई एम एन एक्टर और एक्टर माना ही मेरे पास एक्टिंग का टैलेंट है। तो उस एक्टिंग के टैलेंट को इस मिले हुए कॉस्ट्यूम में, मिले हुए रोल में ऐसे प्रकट करूं, ऐसे प्रकट करूं कि जो रोल मिला है उसके साथ जस्टिफिकेशन हो और लोग कहें वाह क्या कमाल की एक्टिंग की है। इसीलिए हम देखते कोई एक्टर एक फिल्म में हीरो का रोल प्ले कर रहा है और वही एक्टर किसी दूसरी फिल्म में भिखारी का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन जब हीरो का रोल प्ले कर रहा था तो कॉन्शियस में ये नहीं रखा कि मैं साधारण व्यक्ति हूं, घर में रहता हूं, नहीं, मैं व्यक्ति साधारण हूं पर इस समय में एक्टर के रूप में एक्ट करना है, मुझे रोल मिला है हीरो का तो मैं हीरो दिखूं सचमुच का, उस प्रकार से मैं एक्टिंग करूं। और फिर अगर भिखारी का रोल मिले तो वास्तव में वो भिखारी है नहीं पर मैं एक्टिंग ऐसे करूं कि सचमुच का भिखारी दिखूं। सिमिलरली अब जब मुझे पता चला कि मैं आत्मा एक्टर हूं और मेरे पास एक्टिंग की टैलेंट के नाम पर कि एक्टिंग के दौरान मैं क्या प्रकट करूं, मेरी 7 क्वालिटीज। तो चाहे रोल कुछ भी प्ले कर रहे, चाहे कॉस्ट्यूम जो भी पहना है, वो मायने नहीं रखेगा। मायने रखेगा कि वो कॉस्ट्यूम पहनकर रोल प्ले करते समय आप रेडिएट क्या कर रहे थे, अपनी खुद की क्वालिटीज। तो कहेंगे आप सोल कॉन्शियस में जी रहे हैं, अर्थात एक्टिंग करते समय, रोल प्ले करते समय आप शांति से प्ले कर रहे हैं, प्रेम से प्ले कर रहे हैं, कोई परिस्थिति आ गई तो उसको देखकर टूट नहीं रहे, बल्कि शक्ति को साथ में रखते हुए, हौसलों को साथ में रखते हुए, हौसले बुलंद करते हुए उस परिस्थिति को झेल रहे। तो शक्ति मेरा ही तो गुण है ना, प्रेम मेरा ही तो गुण है ना, शांति मेरा ही तो गुण है। परिस्थिति चाहे रुलाने वाली क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं खुशी से उस परिस्थिति को क्रॉस कर रही हूँ, तो मेरा गुण है ना। तब कहा चाहे परिस्थितियाँ जीवन में कैसी भी आ जाए, कितने ही अप्स एंड डाउन्स क्यों नहीं आ जाए, कॉस्ट्यूम कैसा भी पहना हो, रोल कैसा भी मिला हो, लेकिन रोल के साथ जस्टिफिकेशन, अर्थात ये क्यों दिया गया आपको रोल, बिकॉज प्रोड्यूसर को, निर्माता को पता है कि यू हैव द एक्टिंग टैलेंट, और उस एक्टिंग टैलेंट को हम जिस प्रकार से चाह रहे हैं कि आप इस रोल में ऐसा करो, तो आप उसमें फोकस रखो। आप स्क्रिप्ट को नहीं बदलो, आप कॉस्ट्यूम को नहीं बदलो, आप रोल को नहीं बदलो, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट से बेस्ट करो। जो एक्टिंग टैलेंट है उसको निखरने दो। तो हम भी आत्मा एक्टर, मेरी जो क्वालिटीज हैं वो हर एक्ट में रिफ्लेक्ट हो, रेडिएट हो, वाइब्रेट हो, दूसरों को फील हो। दूसरों को क्या, खुद को भी फील होता है ना, जब हम गुस्से में होते हैं और जब हम शांति में होते, खुद को ही फीलिंग आती है। जब हमारे हौसले बुलंद हैं और जब हम अंदर से टूट गए, वो खुद को ही फीलिंग आती है पहले तो। और चूंकि वो हमारी खुद की फीलिंग होती है, तो कहते फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो वो अंदर में जो हम फील कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाता है। लोगों को हमने बताया नहीं बताया वो समझ लेता है, मतलब क्या हुआ, हमारे से वहां तक रेडिएट हो गया, और उस रेडिएट होने के कारण वो भी उसमें आ जाता है। आया था खुशी से आपके पास, आप गमगीन थे, अरे भाई ऐसे क्यों हालत, तो वो भी क्या हो गया, आपके जैसे। लेकिन अगर मैं आत्मा अपनी जो क्वालिटीज है, जो मेरी खुद की पूंजी है, उसको रेडिएट करूं, तो मेरी भी स्थिति अच्छी और दूसरे की भी स्थिति अच्छी। चाहे सामने वाला टूट कर आया हो, सामने वाला गमगीन आया हो, सामने वाला अशांत आया हो, लेकिन मेरी स्थिति से, मेरे वाइब्रेशन से उसको इफेक्ट हो जाए और वो भी अपने गम को भूल। इसको कहते हैं सोल कॉन्शियस होकर जीना। अब तक हम बॉडी कॉन्शियस होकर जी रहे थे, और इसलिए कभी गुस्सा भी कर लिया, कभी नफरत भी कर ली, कभी अशांति भी खड़ी कर ली, कभी अंदर से टूट भी गए, और उसको हमने स्वाभाविक समझा था। भगवान ने कहा वो स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है प्रेम से जीना, शांति से जीना। अगर वो स्वाभाविक होता ना, तो उसमें हम जीते ना, क्यों हम शिकायत करते, कितने दिन हो गए सच्ची शांति नहीं अनुभव की है, कितने दिन हो गए मैंने सामने वाले से प्रेम के दो बोल नहीं सुने, हमेशा घृणा करता रहता है मेरे से, कितने दिन हो गए अंदर से मैं टूटी हुई हूँ, अपने आप को शक्तिशाली नहीं महसूस कर रही। तो ये अपने आप बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि ये स्वाभाविक नहीं है। तो अब जब बात आई कि समझ में आ गया बहन जी कि अब हमें सोल कॉन्शियस होकर जीना है, पर बात आती है समझ भी आ गई, इच्छा भी है कि इसी में मेरा बेनिफिट है, इसी के साथ मुझे जीना है, फोकस भी रखता हूँ, पर न जाने कब बॉडी कॉन्शियस की तरफ फिसल जाता हूँ, मुझे ही नहीं पता चलता है ना? और ये किस बात का इंडिकेशन है कि इच्छा भी है, समझ भी है, ध्यान भी रखता हूँ, पर पता नहीं चलता कब इसमें से मैं खिसक जाता हूँ। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है सोल कमजोर है। एक व्यक्ति शारीरिक रीति से कमजोर हो, एक पोजीशन पर लॉन्ग टाइम स्थिर रह सकता है? नहीं रह सकता है। और उसका समाधान क्या है? अच्छी खुराक खाओ, शरीर को स्ट्रांग बनाओ, तो फिर हाथ को जितनी देर मैं ऐसे रखना चाहूँ रख सकती हूँ। लेकिन अगर कमजोर हूँ तो, वो पीटी करते हैं ना स्कूल में, सर ने बोला ऐसे करो, जब तक दूसरा कमांड नहीं आएगा तब तक नीचे नहीं करना, लेकिन ये ऐसे हो रहे हैं। तब पेरेंट्स को रिपोर्ट किया जाता है कि आपका बच्चा फिजिकली बहुत वीक है, उसका फिजिकल स्टेमिना डाउन है, कुछ बच्चे की खुराक करो। तो ऐसे ही समझ आदि सब है, लेकिन फिर भी मैं उस सोल कॉन्शियस में टिक नहीं पाता हूँ, तो कमजोर है। तो तरीका क्या है? स्ट्रांग बना दो। तो स्ट्रांग बनाने का तरीका क्या है? बच्चे को स्ट्रांग बनाने का तरीका क्या था? शरीर जिन पांच तत्वों से बना है, वो पांच तत्व हेल्दी फॉर्म में, कल बता रहे थे अनहेल्दी फॉर्म में देंगे तो कोई मतलब नहीं, वो शरीर भले मोटा होता जाएगा पर उसमें ताकत नहीं। तो हेल्दी फॉर्म का डाइट देना है, ये तो शरीर की बात। और समझो आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और मैथमेटिक्स में बहुत वीक है, और आप चाहते हैं कि बच्चा दूसरे सब्जेक्ट में इतना न भी मार्क्स स्कोर करे, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई मुझे जॉब नहीं करानी उसको, मुझे तो उसको अपने धंधे में लगाना है, इसलिए मैथमेटिक्स उसका ठीक होना चाहिए। जोड़ घटाना ही ठीक नहीं होगा तो मेरे धंधे में मेरे पैसों का क्या कर डालेगा वो, तो इसको मुझे मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बनाना है। देख रहा है कमजोर है, तो क्या करोगे आप अपने बच्चे के लिए? वो तो फिजिकली था तो डाइट दिया, अब यहाँ पे किसी सब्जेक्ट में वीक है तो आप क्या करोगे? ट्यूशन लगाएंगे। और ट्यूशन लगाने का सिंपल मीनिंग क्या है कि बच्चा जिस सब्जेक्ट में कमजोर था उसी सब्जेक्ट में जो स्ट्रांग है उसके साथ उसको जोड़ देना, यही मीनिंग है उसकी, ताकि उस जिसके साथ मैं जोड़ूंगा वो उस चीज में स्ट्रांग होने के नाते वो गणित की बातें, सेम बातें अलग अलग तरीके से उसके सामने प्रस्तुत करता रहेगा बार बार, और वो उसके अंदर में बात बैठती जाएगी, और इस प्रकार से मेरा बच्चा मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होगा। ऐसे ही मुझे सोल कॉन्शियस स्टेज को स्ट्रांग बनाना है। अभी हम वीक है कि न जाने कब हमको पता ही नहीं चलता और हम फिसल जाते हैं, तो मुझे भी ट्यूशन लगानी पड़ेगी। किसके पास लगाएंगे? जो सोल कॉन्शियस में स्ट्रांग हो, है ना? जिस सब्जेक्ट में बच्चा कमजोर था उसी टीचर के पास हमने उसकी ट्यूशन लगा दी। तो हम कौन से सब्जेक्ट में वीक है? सोल कॉन्शियस स्टेज में। तो मुझे ऐसे के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की जरूरत है जो सोल कॉन्शियस में स्ट्रांग है। तो कौन है सोल कॉन्शियस में स्ट्रांग? परमात्मा। क्यों? क्योंकि परमात्मा के पास खुद की बॉडी ही नहीं है तो उसकी वहां पे फिसलने की मार्जिन ही नहीं है। हमारे पास तो बॉडी है ना, तो हम फिसल जाते हैं क्योंकि लंबे समय तक हमने सोल कॉन्शियस को जिया नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों ने बेसिक कोर्स किया, हम तो थोड़ा डेप्थ समझ रहे हैं ना, आप सभी ने कोर्स तो किया है, तो उस कोर्स में बताया ना कि द्वापर युग से हमारे जीवन में बॉडी कॉन्शियसनेस आया है। सत्ययुग में हम लोग बॉडी कॉन्शियस नहीं थे, सोल कॉन्शियस थे। वो रिजल्ट कहां से थी? हमने वहां सोल कॉन्शियस का अभ्यास नहीं किया जैसे अभी कर रहे हैं। संगम युग का अभ्यास वहां काम आया। कैसे काम आया? सभी ने बचपन में वो भौरा चलाया है, लट्टू चलाया है, तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो देखता है दूसरों को कि लट्टू कैसे चला रहे हैं, तो वो देखता है, बोलता मैं भी करूंगा। फिर वो भी भौरा हाथ में उठाता है, रस्सी उठाता है, और वो देखता है भौरे को कैसे पकड़ा, क्योंकि बच्चा तो देख देख के ही सीखता है ना सब कुछ। तो एक एक चीज नोटिस करता जाता है और वैसा करते जाता है, वैसा करते फिर लपेटेगा उसको। अभी बच्चा अब नई प्रैक्टिस शुरू किया है तो एकदम से परफेक्ट नहीं होगा उससे, लेकिन ट्राई जरूर करता रहेगा। और जब चलाएगा, जैसे भी रस्सी बांधी है, तो वो देखता है कि मेरे बड़े भैया ने जैसे चलाई वैसा नहीं चल रहा है मेरा लट्टू। भैया भैया आप कैसे करते हो बताओ ना। फिर नोटिस करेगा और प्रैक्टिस को जारी रखेगा, और एक दिन आता है उसका भी कि वो भी एक्सपर्ट होता है। और यूं भौरा फेंका और इतना सुंदर चल रहा है, आपने देखा होगा जब बहुत एक व्यक्ति सधा हुआ व्यक्ति चलाता है तो भौरा जब अच्छा चलता है ना, तो बिगिनिंग में शुरू में उसकी इतनी स्पीड और इतनी एकरस स्थिति होती है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि वो गोल घूम रहा है, पता भी नहीं चलता, इतनी स्थिरता पर चल रहा होता है वो। लेकिन जो कि इतना फास्ट चल रहा है, इतनी स्थिरता है, तो महसूस ही नहीं होता है कि वो चल रहा है। लेकिन एक बार फेंक दिया, उस समय वो 100% फास्ट स्पीड में था, उस समय वो 100% स्थिरता में था। लेकिन फेंक देने के बाद उसकी स्पीड क्या हो रही है? धीरे धीरे। उसकी स्थिरता क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही। फिर एक समय आता है कि जहां महसूस होता है हाँ अभी गोल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर बाद में दिखता है कि अभी थोड़ा सा डोल रहा है, और फिर दिखता है कि गिर गया। तो ये हमने अभी अभ्यास कर रहे हैं, इसमें हम एक्सपर्ट होंगे, एक्सपर्ट होते होते हम परफेक्ट हो जाएंगे। हर एक की परफेक्टनेस अपने लेवल की होगी। जैसे आप लोग वो करने वाले हैं ना कल्चरल इवनिंग, तो पर्दे के पीछे क्या होता है? एक्टर्स तैयार होते हैं, समय आता है पर्दा खुलता है। अगर वो पीछे एक्टर ने समय पर अपने आप को रेडी नहीं किया तो चाहे जो भी स्थिति में वही उसकी परफेक्ट स्टेज है, वही उसकी परफेक्ट स्टेज हो जाएगी। कोई वो तिलक लगा रहा होगा तभी पर्दा खुल जाएगा, हाँ वो बोलेगा रुको 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 रुको, पर नहीं रोकेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। तो ऐसे ही संगम का जो समय पूरा होगा और उस समय तक हम जितने भी रेडी होंगे वही हमारी परफेक्ट स्टेज होगी, और वही परफेक्ट स्टेज लेकर हम घर में विश्राम करेंगे और सत्ययुग में आएंगे। तब हम सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन वो भौरा जैसे चल रहा है वैसे चलेगा चलेगा चलेगा। तो सत्ययुग में भी, त्रेता में भी, और फिर कितने वर्ष? 2500 वर्ष। तो जैसे भौरा भी धीरे धीरे क्या होता है? गिर जाता है। तो हमारी जो नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज होती है वो त्रेता के एंड में आके जीरो पर चली जाती है। अर्थात हम ये भूल जाते हैं कि हम एक्टर हैं, तो पूरा ध्यान बॉडी पर। और चूंकि एक्टर है मैं सोल हूं भूली, तो कोर क्वालिटीज भी भूल गई। तो फिर उसका अपोजिट, जैसे कहते हैं नीचे उतरने के लिए कोई मेहनत थोड़ी है, और एक बार नीचे उतरे तो धड़ गिरते हैं, है ना। तो कैसे हम लोग जब सोल कॉन्शियस हमारी जीरो हुई है तो कैसे बॉडी कॉन्शियसनेस ने उसका स्थान ले लिया। तो बॉडी कॉन्शियस ने भी कैसे स्थान लिया कि भले हम सत्ययुग त्रेता में थे सोल कॉन्शियस नेचुरली, लेकिन सोल कॉन्शियस रहते रहते भी इन पांच इंद्रियों के माध्यम से बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर चित्त में स्टोर तो हो रही थी ना। रूप रंग नहीं देख रहे थे क्या हम? ध्वनि नहीं सुन रहे थे क्या हम? उस समय हम टेस्ट नहीं ले रहे थे क्या? हम स्मेल नहीं ले रहे थे क्या? हम स्पर्श का अनुभव नहीं कर रहे थे क्या? सब कर रहे थे वहां पे, लेकिन चूंकि सोल कॉन्शियस में थे, वो सब करते हुए भी ये सब एक्टर हैं और हम सब एक्टर की क्वालिटीज को रेडिएट कर रहे थे। सो नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, नो क्रिटिसिज्म, ड्रामा को एंजॉय करें। नहीं, जैसे आप कल्चरल इवनिंग भी करेंगे उस दिन, तो सबका अलग अलग पार्ट होगा ना, लेकिन हर एक एंजॉय कर रहा होगा। छोटा सा छोटा पार्ट भी होगा लेकिन एंजॉय करेगा, क्योंकि उसको उस समय वो भान है, आई एम जस्ट प्लेइंग द रोल। तो वो सत्युग त्रेता में वो कॉन्शियस रहता है, तो नो कॉम्पिटिशन, नो क्रिटिसिज्म, नो कंपेरिजन। लेकिन जब हम जीरो हो गए सोल कॉन्शियस में और वो सारे प्रिंट तो अंदर चले गए ना सारे, उसके बाद उसी के कारण से बॉडी कॉन्शियसनेस उठा, अर्थात एक दूसरे को पहले तो सोल के रूप में देख, एक्टर के रूप में ना देखकर एक बॉडी के रूप में देखा, और फिर अंतर पह कहा ना कंपेरिजन। अच्छा, ये ज्यादा रही, मैं क्यों कम? इसका बंगला बड़ा, मेरा क्यों कम? ये ज्यादा सुंदर, मैं थोड़ा उससे कम। और वहां से हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस ने धुआं फेंकना शुरू किया, अर्थात अशांति, नफरत, घृणा, ये आदि निगेटिव जो मेरी क्वालिटी से उसका अपोजिट जन्म लेना शुरू किया। और शुरू में थोड़ा थोड़ा था, जैसे बुखार आता है ना, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर 98 होता ही है, तो बुखार आता है सीधा 103 थोड़ी जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो ऐसे ऐसे हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस का बुखार चढ़ने लगा हमको, और चढ़ते चढ़ते कलयुग में कितना चढ़ गया, 105। तभी तो देखो, जब देखो धुआं ही निकल रहा है, हर छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा, हर छोटी छोटी बात के लिए चिड़चिड़, हर छोटी बात के लिए ईर्ष्या, हर छोटी बात के लिए टेंशन, हर छोटी बात में डिप्रेशन। ये बता रहा है कि बॉडी कॉन्शियसनेस कितना हमारा बढ़ गया, बुखार कितना बढ़ गया। तो इसलिए कहा कि अब हम ये बॉडी कॉन्शियसनेस में इसलिए फिसल जाते कि वो स्ट्रांग हो गया है अभी, तो हमको खींच लेता है। जैसे पहले ग्रामोफोन्स होते थे ना, तो रिकॉर्ड गोल होता था, फिर सुई जहां रहेंगी वहां बजता था, लेकिन कभी कभी वो रिकॉर्ड में अगर ध्यान नहीं दिया तो कहीं गड्ढा हो जाता है, तो फिर क्या होती है, सुई पता नहीं फिसल के उस गड्ढे में चली जाती है, और एक बार गड्ढे में फंसी तो वही वाला राग चालू अल्पाना शुरू हो जाता है। तो हमारा भी वही हो रहा है, सोल कॉन्शियसनेस पे अपनी सुई को लेके जाते हैं, लेकिन वो बॉडी कॉन्शियसनेस का गड्ढा पहले से ही तैयार हो गया, एक फिसलन तैयार हो गई है। तो हम फोकस करते हैं कि सोल कॉन्शियस में रहे, और न पता कब वो फिसल के उस गड्ढे में आज हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उस गड्ढे को भरना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है। इसलिए उस परमात्मा जो सदा ही सोल कॉन्शियस है, क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी बॉडी है ही नहीं, इसलिए उसके साथ मुझे कनेक्ट भी होना है। इसीलिए कल कहा ना कि कोर क्वालिटीज में अपने आप को याद दिलाऊं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। पर उतने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं याद दिलाऊंगी फिर क्या हो जाऊंगी, मैं फिसल जाऊंगी, फिर क्या हो जाऊंगी, बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ फिसल जाऊंगी। और इसलिए जो सोल कॉन्शियस में स्ट्रांग है, उसके साथ कनेक्शन अर्थात उसके साथ ट्यूशन जरूरी है। और इसीलिए कहा रोज वो भगवान जो ज्ञान सुना रहा है, जिसको हम मुरली कहते हैं, रोज उसका श्रवण करो, उसमें से कोई एक दो पॉइंट पर गहरा चिंतन करो, मंथन करो। क्योंकि सिर्फ श्रवण कर लेने से काफी नहीं होता है, खा लेने से सब कुछ नहीं होता है, डाइजेस्टिंग पावर होनी चाहिए। अगर डाइजेस्ट नहीं किया, वॉमिटिंग या डायरिया के रूप में यूं ही निकल आ जाएगा। आपके बॉडी को मिला तो नहीं, बल्कि इस बॉडी को उसको निकाल के फेंकने में जो ताकत लगी वो भी आपकी पहले जो थी वो भी कम हो गई। तो भगवान के महावाक्यों को जरूर सुने, जरूर उस पर चिंतन करें और उसके साथ योग कनेक्शन। तो टावर ऑफ पीस पे आप गए होंगे ना, तो यहां इस तरफ खड़े होते तो टावर ऑफ पीस दिखता है, और अगर अपोजिट में जाएंगे तो टावर ऑफ माइट लिखा है, पावर, माइट माना पावर, इधर पीस लिखा है उधर पावर। और नीचे अगर आप पढ़ेंगे, तीन ऐसे बने हुए ना खांचे, तो पहले वाले में लिखा है मीठे बच्चे अपने आप को आत्मा समझो और निरंतर मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। सीधा नहीं कहा कि मुझे याद करो, पहले क्या कहा, पहले आत्मा समझो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैंने उनको भगवान को याद करो ऐसा बोला भी नहीं, तब भी वो खुद ही याद कर रहे हैं मुझे, तो है ना। हमको किसी ने बचपन में थोड़ी भगवान ने, तब तो आया भी नहीं था ना, ये तो 1936 में आया है, फिर जब हम इधर आए हैं ब्रह्मा कुमार तब हमको समझ में आया, उस समय तो हमें पता भी, लेकिन तब भी तो हम भगवान को याद कर रहे हैं ना तब से। तो इसलिए उसने सीधा ये नहीं कहा कि मुझे याद, उसको पता है मेरे बच्चे मुझे याद ही कर रहे हैं, परंतु मुझे याद करते हुए भी मुझसे जो उनको प्राप्ति होनी चाहिए थी सुख और शांति की, उसी के लिए तो याद कर रहे ना। हाँ, दुनिया की धन दौलत भी चलो मांगते भी होंगे, लेकिन चलो आ भी गया फिर भी क्या कहते हैं, भगवान धन दौलत तो आ गई परंतु सच्ची शांति नहीं आई, हे भगवान रिश्ते तो जुड़ गए जो नहीं जुड़ रहे थे लेकिन सच्चा प्रेम अभी तक नहीं आया, यही कह रहे ना अल्टीमेटली। तो भगवान को पता है कि अल्टीमेटली बच्चे मेरे से क्या मांग रहे हैं, और अल्टीमेटली जो बच्चों को चाहिए वो मिलने से दुनिया की जो भौतिक कमियां है वो उन कमियों में भी वो खुश रह पाएंगे। तो वो कमी पूरी करने के लिए ही उसने कहा कि पहले अपने आप को आत्मा समझो, क्योंकि बगैर आत्मा समझे जब हम उसको याद कर रहे थे तो वो कौन है, सर्वशक्तिवान, और हम उसको याद कर रहे हैं। शक्ति इधर आनी नहीं चाहिए थी क्या, लेकिन हो क्या रहा है, हम तो हर दिन टूटते जा रहे हैं, हमारा विल पावर तो हर दिन कम होता जा रहा है, हम उसको याद कर रहे हैं तुम शांति के सागर हो, इधर शांति क्या हो रही है, हर दिन कम हो रही, हम उसको याद कर रहे तुम प्रेम के सागर हो, इधर प्रेम क्या हो रहा है हर दिन। तो उसको पता है कि बच्चों की फॉल्ट किधर हो रही है, तो मुझे याद तो कर रहे हो बच्चे लेकिन सही मेथड यूज नहीं कर रहे हो, जिस कारण से तुम सही मायने में मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, और इसलिए जो तुमको मेरे से मिलना चाहिए था, जिन शब्दों में तुम मेरी महिमा कर रहे वो गुण तुम्हारे पास आना चाहिए था पर नहीं आ रहा है, और इसलिए कहा पहले आत्मा समझो। तो भक्ति में हम क्या कर रहे थे, भगवान को याद करने के नाम पर मंदिर में भी विजिट करते हैं, तो मंदिर में जब विजिट करते हैं तो चप्पल बाहर खोल देते हैं, पहले तो चमड़े की चप्पलें होती थी, आजकल तो वैरायटी हो गया है, तो चप्पल खोलने का मतलब था कि अंदर चमड़ा नहीं जाएगा, चप्पल खोलने का मतलब था अंदर चमड़ा नहीं जाएगा। और फिर क्या करते थे, खुद को भी तिलक और उधर जो मूर्ति है उसको भी तिलक, यही करते हैं। ये भक्ति मार्ग में भी जो कुछ कुछ मेथड बनी ना, ये हमको कुछ याद दिलाने के लिए थी, क्योंकि हम त्रेता में जाकर क्या हुए, एंड में सोल कॉन्शियस हमारी जीरो हो गई, लेकिन सोल कॉन्शियस से ही जीवन अच्छी रहते ये भी पता था, क्योंकि अभी अभी जीरो हुई थी ना, त्रेता से जब हम द्वापर में आए तो अभी अभी कम हुई थी, तो वो हमें याद आ रहा था कि हम कैसे वो रेडिएट करते थे, जीवन में कितनी खुशियां थी, कोई कंपैरिजन नहीं होता था हमारे मन में, लेकिन अभी ये होने लग गया, शायद हम उसको भूल गए हैं ना। तो इसीलिए जब मंदिर भी बनाए तो क्या किए, प्रथा ऐसी बनाए कि चमड़ा बाहर रखो, तिलक लगाओ इधर भी और तिलक लगाओ उधर भी, कि चलो सारा दिन जो हमारी लौकिक कारोबार है उसमें हमको ये याद न भी आ रहा है क्योंकि जीरो हो गया है, तो कम से कम पूजा के नाम पर, भगवान के मंदिर में विजिट के नाम पर, चमड़े को बाहर जैसे ही करोगे आपको अंदर से ये याद आ जाए, ये चमड़ा किस लिए उतार रहा हूं मैं, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस को भूलूं। और बॉडी कॉन्शियसनेस माना मैं बड़ा सेठ हूँ, मैं ये हूँ, उसी के आधार पे तो हम कंपेयर करते हैं ना, और किसके आधार पे कंपेयर करते हैं, मैं बहुत वेल्दी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो ना हो तो हम कंपेरिजन किस आधार से करें। तब भगवान ने कहा कि चमड़ा बाहर, जो प्रथाएं ऐसी बनी, चमड़ा बाहर मना, हम बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ रहे थे, ये स्मृति में कभी नहीं रहो। और फिर क्या किया कि ये स्मृति आखिर भूले कैसे, चमड़ा तो वो फिजिकली तो इजीली है, परंतु इधर कैसे बॉडी कॉन्शियस को भूले, तो कहा अंदर जाते ही फिर क्या करो, तिलक लगाओ कि यहाँ जो आत्मा विराजमान है पॉइंट ऑफ लाइट, वहां पर ध्यान को केंद्रित करो। और यहां ध्यान केंद्रित करने के बाद वहां भी जो मूर्ति विराजमान है उसके भी यहां पर केंद्रित करो, सिर्फ बॉडी पर नहीं, क्योंकि यहां पर भी बॉडी को छोड़कर क्या किया, यहां, तो वहां पर भी बॉडी को छोड़कर वहां, तब जाके कनेक्शन होगा, आत्मा आत्मा का कनेक्शन, फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए ना। इलेक्ट्रिक वायर कहीं से कट गई है, जोड़ना है तो ऊपर की कोटिंग हटानी पड़ती है, क्योंकि पता है वो कोटिंग तो सिर्फ सेफ्टी के लिए, उसमें से करंट थोड़ी जाता है, करंट जो अंदर की कॉपर वायर है उसमें जाता है, और इसलिए उनको कनेक्ट करना है हमें। तो ये प्रथा इसलिए बनी थी कि बॉडी चमड़ा छोड़ो माना बॉडी कॉन्शियसनेस भूलो, तो कैसे भूले, तो यहाँ पे टीका लगा लो, आत्मा ये तार के पास आ जाओ, कोटिंग को उतार दो, तार के पास आ जाओ, और उधर भी कोटिंग नहीं, उधर की भी तार पकड़ो और कनेक्ट हो जाओ, तो फिर क्या होगा, वो अंदर की वायर जुड़ गई तो करंट पास होगा। और इसलिए क्या भगवान ने कहा, मीठे बच्चे पहले अपने आप को आत्मा समझो, क्योंकि वो भी एक आत्मा है, और आत्मा और दोनों, मतलब मैं आत्मा वो भी आत्मा, मैं पॉइंट ऑफ लाइट वो भी पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन अंतर क्या है, वो सुप्रीम है, मतलब मैं गागर हूं वो सागर है, मैं बैटरी हूं वो पावर हाउस है ना, सुप्रीम का मतलब ये ना, जो सबसे ऊंचा उससे ऊंचा कोई और नहीं, तो मैं बैटरी हूं और वो पावर हाउस है, पावर हाउस कभी खाली होता है क्या, लेकिन बैटरी गागर खाली होती है ना, सागर खाली होता है क्या, तो मुझे जरूरत है उसको कनेक्ट होने की, वो तो सदा भरा हुआ है। तो वहां भी जो मंदिर में जो भी मूरत थी ना, पहले तो वहां से कनेक्ट किया, लेकिन वो मूरत भी किससे कनेक्टेड है, जैसे अभी गणपति आ रहे हैं है ना, गणपति जी आ रहे ना, तो गणपति जी किसके पुत्र हैं, शिव जी, शिव जी कौन है, भगवान है, अर्थात वो भी किससे कनेक्टेड है, समझ में आ रही है बात, तो हमें वहां पर ध्यान रख के फिर वो जो जिससे कनेक्टेड है उसके साथ कनेक्ट हो जाना था, परंतु हमने सिर्फ कर्मकांड के रूप में किया, चप्पल उतार दी, जाके टीका लगाया, उधर लगाया, यू 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 किया, हो गया, तो उससे तो शांति नहीं आएगी ना, करंट पास ही नहीं हुआ ना, तो करंट पास करना था। तो ये जो मूर्ति दिख रही थी ना, हरेक ने अपनी अपनी, जब तक ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं आए थे तो हरेक की अपनी अपनी आस्था के अनुसार एक भगवान दिल में बिठाया हुआ था। किसी ने गणपति को, किसी ने माँ दुर्गा को, किसी ने कृष्ण जी को, किसी ने अपने गुरु को ही, हरेक की अपनी अपनी आस्था थी। लेकिन वो सर्वोच्च तो नहीं है ना, सुप्रीम तो नहीं है ना, वो भी एक बैटरी है, वो भी खाली। अब खाली खाली से जोड़ के कितना मिलेगा बोलो। लेकिन अब जब आप कहेंगे मंदिर में जो मूर्त विराजमान है वो तो भरपूर है, क्योंकि मंदिर में जो विराजमान है वो भरपूर फॉर्म वाला विराजमान है, अभी श्री कृष्ण जिसको 16 कला संपूर्ण कहते हैं। लेकिन ये जो इमेज दिख रहा है ना बॉडी का, वो वास्तव में क्या है? अभी देखो पावर हाउस से कनेक्शन आ रहा है, लाइट आ रही है, करंट आ रहा है, सीधा आपके कमरे में आएगा वो नहीं, बाहर में स्विच बोर्ड वगैरह कुछ बनाना पड़ता है, सीधा कमरे में नहीं आता है, फिर वहां से फिर कमरे में। कमरे में भी कैसा, एक स्विच बोर्ड दिख रहा है, स्विच बोर्ड है ना। अब इस स्विच बोर्ड को आप कितना भी सुंदर बना लो, बटन्स कितने भी वैरायटी डिजाइन वाले लगा लो, गोल्ड प्लेटेड कर दो, सिल्वर कोटिंग कर दो, उससे आपके पास करंट आएगा क्या? मैंने कहा मेरा स्विच बोर्ड बड़ा सुंदर है, उसका वाला तो ऐसा ही है, लेकिन अंदर से जो तार होती है ना वो कटी पड़ी है, अंदर से तार कटी पड़ी है। तो कितना ही सुंदर स्विच बोर्ड क्यों नहीं हो, करंट नहीं मिलेगा। तो हम कई बार कहते हैं मैं गणेश जी को क्यों याद करता हूं, मुझे वो मूर्त बड़ी अच्छी लगती है। मैं श्री कृष्ण को क्यों, मुझे वो मूर्त बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है वो स्विच बोर्ड है, लेकिन कनेक्शन है कि नहीं वो चेक किया? तार तो कटी पड़ी है, तार तो कटी पड़ी है, तो सिर्फ स्विच बोर्ड को देखने से काम नहीं चलता है। तार तार से जुड़े, और वो तार पावर हाउस से जुड़ी हो। कई बार हम देखेंगे कि इधर तो डिस्कनेक्ट नहीं है, पर वहां से जो आ रहा है खंबे से, वहां डिस्कनेक्ट है। तब फिर हम इलेक्ट्रिशियन को और वो बिजली विभाग वालों को फोन करते, हमारे पोल से वो उड़ गया है, आके ठीक करो। हमने घर में तो सब चेक कर लिया, सब ठीक है, तो जहां से आ रहा है वहां से कट है। तब कहा भगवान को जो हम याद करते हैं भक्ति में भी, पूरी मेथड तो दी गई थी हमको, पर हम कर्म कांड तक रह गए, उसके रियल अर्थों को नहीं समझा। तो जैसे का स्विच बोर्ड को देखते रहने से, उसके बटन को दबाते रहने से उधर तार कटी हुई है तो कुछ होने वाला नहीं है, और स्विच बोर्ड बटन इधर भी कटा हुआ है, उधर भी कटा, इधर भी कटा, कैसे होगा? तो हमारा हाल तो ये है, इधर भी कटे हैं, उधर भी कटे हैं, ना तो सोल कॉन्शियस स्टेज में है और न सामने वाली मूर्त के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, वो तो स्विच बोर्ड को ही देख रहे हैं हम बैठ बैठ के, और उसमें ही खुश हो रहे हैं। कान्हा के गाल ऐसे हैं, कान्हा की कमर टेढ़ी है, कान्हा की नजर ऐसी है, ठीक है वो भी, लेकिन वो भी ऐसा क्यों है? क्योंकि अंदर से करंट आ रहा है। अंदर से करंट आना बंद, डेड बॉडी। कितना भी सुंदर क्यों नहीं हो, सिद्धार्थ शुक्ला जी फेमस थे, बहुत अच्छा एक्टर था, लेकिन जैसे ही वो लाइट चली गई क्या हुआ? रखेंगे हम इसको, डेड बॉडी, कर दो अंतिम संस्कार। क्योंकि जिस लाइट के कारण से वो जीवंत था, जिस ज्योति के कारण से वो जीवंत था, वो तो है ही नहीं। तो इम्पोर्टेंस है उस ज्योति का। मैं आत्मा ज्योति, पिता परमात्मा परम ज्योति। इसलिए जैसे योग में भी कंडक्ट करते हैं ना यहाँ पे, तो लोग बोलते बहन जी किसको याद करें, इसको याद करें, यहाँ वाली को या भगवान को याद करें? अगेन स्विच बोर्ड, ये स्विच बोर्ड है आपका, कि जैसे ये कनेक्ट है वहां से, कि डायरेक्टली हम नहीं हो पा रहे, तो जैसे कहा ना बच्चे को ट्यूशन लगानी है तो पहले तो माँ भी घर में पढ़ाती है ना, लेकिन देखती है कि मेरे में इतना नहीं है तो मैं क्या करूंगी उससे ज्यादा वाले में। तो ये इसलिए एक सैंपल यहां रखा जाता है कि जैसे यहां बैठे वाले कनेक्ट कर रहे हैं वहां से तैयार अकपट है तो स्विच बोर्ड ये भी, पर स्विच बोर्ड ये उससे कनेक्टेड है। तो प्रेरणा लेकिन जैसे ये आत्मा यहाँ पे बैठी हुई कनेक्टेड है, ऐसे मैंने भी भले इधर देखते हुए, जैसे कहा ना गणपति की मूर्त है, तिलक वहां लगाया है, पर किसका पुत्र है? देखो आरती गाते तो उसमें उसका वर्णन आ जाता है, वो क्लियर इंडिकेशन है कि वहां तक नहीं रुको, उसके भी जन्मदाता जो है उसको याद करो, माना शिव तक पहुंचो। परंतु हम समझे नहीं कुछ भी, और इसमें हमारा दोष भी नहीं। बॉडी कॉन्शियस हुए एक बार उतरना शुरू होता है तो धड़धड़ गिरते ही है, एक बार बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू होती है तो होती ही है ना। लेकिन फिर क्या करना होता है उसके लिए? चार्जिंग करनी होती है। तो मोबाइल के एग्जाम्पल से मैं आपको अभी थोड़ा क्लियर करती हूँ कि जैसे हमने मोबाइल आजकल के जमाने हम सब यूज कर रहे हैं और बहुत सारे ऐप्स हैं उसके अंदर, एक एक काम के लिए एक एक ऐप बना हुआ है। बुकिंग करनी है, परचेसिंग करनी है, गीत सुनना है, रिकॉर्डिंग करना है, फोटो निकालना है, गेम खेलना है, पता नहीं कितनी सारी उसके अंदर फैसिलिटीज ऐप के नाम पर है। और वो भी एक एक क्लिक पर वो सेवा मौजूद हो जाती है, एक क्लिक करो ओपन है ना। लेकिन अगर मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो क्या होगा? वो ऐप दिखना ही बंद हो जाएंगे, काम करने की तो बात बहुत दूर है, दर्शन ही नहीं देंगे, आपकी स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो जाएगी। फिर भी अगर आप सोचो कि नहीं क्लिक मारूं निकल के आए तो आपका कांच फूट सकता है, परंतु कोई ऐप निकल कर नहीं आएगा। लेकिन अगर समझ है कि ऐसा क्यों हुआ है, बैटरी के डिस्चार्ज होने से, तो मैं क्या करती हूँ, बैटरी को चार्जिंग पर, मोबाइल को चार्जिंग पर रखती हूँ। और जैसे ही मोबाइल को चार्जिंग पर रखती हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, अरे ये तो ऐप्स दिखने लग गए, फिर क्लिक किया अरे ये तो फंक्शन भी करने लग गए। तो क्या सीखने मिला इस एग्जाम्पल से? इस एग्जाम्पल से ये सीखने मिलता है कि बैटरी के डिस्चार्ज होने से ऐप्स नष्ट नहीं होते हैं, ऐप्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो तो सिर्फ डिसअपीयर होते हैं, वो तो सिर्फ गुमशुदा हो जाते हैं, आपकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। इसीलिए तो चार्जिंग पर फिर से अपीयर, अगर नष्ट हुए होते तो कहां से अपीयर होते? कोई व्यक्ति नष्ट ही हो गया है तो आएगा क्या? जो व्यक्ति मर गया, कभी उसके लिए आपने अखबार में पढ़ा क्या फलाना व्यक्ति मर गया, कोई उसको वापस जिंदा करके दे? लेकिन गुमशुदा के लिए आते हैं, फलाना व्यक्ति गुमशुदा है, उसकी ये पहचान है, जिस किसी को भी मिले हमारे तक पहुंचाना इतना इतना है। तो गुमशुदा को वापस लाया जा सकता है, तो मरे हुए को तो नहीं लाया जा सकता है ना। तो ऐप्स अगर फिर से आ रहे हैं तो मरे नहीं थे ना, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे ना, सब गुम हुए थे। और क्यों गुम हुए? तो कहा उसको चार्जिंग जो चाहिए थी वो था नहीं, तो डिसअपीयर हो गए। तो ऐसे ही जो कल हमने आपको बताया कि अरेंजमेंट आत्मा में पूरी है, आज भी हमारे जो ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, जो हमारा मूल स्वभाव है, जो हमारे मूल संस्कार हैं, आज चाहे हम कितने ही टेंस्ड क्यों नहीं जी रहे हो, चाहे हम कितने ही डिप्रेस्ड क्यों नहीं हो गए हो, चाहे हम कितने ही अंदर से न, कभी कभी किसी ने हमारे जीवन में कुछ किया होता है तो उसके लिए ऐसा कुछ आता है, विरोध की भावना, रिवेंज की भावना, चाहे उससे हम कितने ही क्यों नहीं भरे हो, जीवन की परिस्थितियों से कितने ही अशांत क्यों नहीं हो गए हो, बावजूद इसके मेरे वो सात गुण आज भी मेरे साथ है, आज भी मेरे साथ है, कोई छीन नहीं सकता। पानी की शीतलता नहीं छीन सकते आप, सूर्य की गर्मी नहीं छीन सकते आप, तभी तो उसको कोर क्वालिटी कहते, तभी तो उसको गुणधर्म कहते, उसका स्वयं का गुणधर्म। जब मेरा भी गुणधर्म वो है, वो कहीं मेरे से दूर नहीं गया है। परंतु जैसे का मोबाइल का एग्जांपल दिया ना, तो यही मोबाइल, एक तो मैंने कहा जब कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाती, वो मैंने एग्जांपल, अभी मैं कहती हूँ कि सपोज मैं मोबाइल से किसी से बात कर रही हूँ तो कभी कभी बहुत गर्म महसूस होता है, क्यों? देख, हाँ, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो बैटरी जब अबाउट डिस्चार्ज होती है तो गर्म ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि हार्मफुल रेडिएशन फेंक रहा है अभी, और फिर भी हम बात करें क्योंकि अभी फुल डिस्चार्ज नहीं हुई है, अबाउट टू डिस्चार्ज, तो उस केस में क्या होता है, सिग्नल वीक हो जाता है, कैच नहीं कर पाती ना, वॉल्यूम भी डाउन हो जाता है, लेकिन हम फिर भी बात कर रहे, अपने ही लगन अपनी लगी है बात करने की, उसमें मजे से बात कर रहे हैं फिर भी, तो क्या हो रहा है, सिग्नल वीक होने के कारण, वॉल्यूम डाउन होने के कारण सामने वाले को मेरी बात क्लियर नहीं महसूस हो रही, कट कट के थोड़ा सुना फिर थोड़ा कटा, फिर थोड़ा सुना फिर थोड़ा कटा, और ऐसा करते करते और सामने वाले ने भी जो बोला मुझे भी थोड़ा कट कट होके सुना या नहीं सुना, और ऐसा करते करते बैटरी जीरो पे चली गई। तो क्या होगा इससे, रोना शुरू कर देंगे अभी? नहीं, समझ है ना, बैटरी को चार्ज। तो अभी हमारा भी तो वही हो रहा है ना, हमारा भी तो वही हो रहा है ना कि रिश्ते भी, तो जब ऐसा होता है ना कट कट, तो उसमें क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई ना। तो आज हमारे जीवन में क्या हो रहा है, बात बात पे गर्म हो रहे, चाहे वो गुस्से के नाम पर चिड़चिड़ेपन, तो और फिर हर दूसरे तीसरे दिन दो व्यक्ति के बीच एक कॉमन डायलॉग रिपीट होता है, आप मुझे समझते क्यों नहीं हो, सामने वाला कहता आप मुझे नहीं समझते हो, क्योंकि कट कट के हो रहा है ना, तो हार्मनी रिलेशन की खत्म। तो यही तो किस लिए हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज, यही हुआ था ना मोबाइल में, तो क्लियर इंडिकेशन है मेरी आत्मा रूपी मोबाइल के ऐप तो आज भी मेरे पास है पर बैटरी डिस्चार्ज, इससे धुआं निकल रहा है। तो जैसे उस केस में हम रोते नहीं है, समझ है हमको, चलो चार्जिंग पे रख दो, ऐसे ही इस आत्मा को भी चार्जिंग पे रखना होगा। तो चार्जिंग पे रखने का सिंपल तरीका है, कनेक्टर चाहिए, जिस कनेक्टर के दो छोर होंगे, एक छोर जिस मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना है उस पे जाएगा, दूसरा छोर जहां से इसको चार्जिंग मिलेगी उस तरफ जाएगा, और बटन ऑन है ना। तो फिर हम चेक भी कर लेते हैं स्विच बोर्ड राइट है कि नहीं है, प्रॉपर कनेक्ट देखते हैं, लगता है ये ठीक नहीं, दूसरी जगह ढूंढते हैं, फिर करते नहीं करते, फिर अगर दूसरा बोलता नहीं मैंने तो अब भी किया, ओ फिर चेक करते हैं अपनी तार को कहीं कटी तो नहीं है, अगर दूसरे का हुआ है तो स्विच बोर्ड तो राइट है पर मेरा नहीं है, मतलब मेरी तार कहीं से लूज होगी, तो उसको चेक करता है। तो ऐसे ही परमात्मा ने कहा कि तुम मुझे याद तो कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्यार है तुमको मेरे से, तुमको पता है कि जीवन की हर बात अगर सुलझेगी तो उस पिता परमात्मा से ही सुलझेगी। परंतु बच्चे तुम्हारा कनेक्शन बहुत लूज है, इसको ठीक करो। एक तार का एक छोर पहले अपने को लगाओ, डायरेक्ट इधर मत आओ मेरे पास। बैटरी को जाके मैंने वहां रख दिया तो थोड़ी चार्ज हो जाएगी। एक पहले छोर इधर तो लगाओ। और इसलिए कहा कि भगवान को जब याद करना है अंदर की ओर चले जाओ, आत्मा समझो अपने को, रेडिएट करो अपनी क्वालिटीज को प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप की। अब वो तो सदा ही प्रेम का सागर है, तो मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी पे लाओ पहले अपने आप को, और उसकी फ्रिक्वेंसी तब का पहले टीका इधर लगाओ फिर टीका उधर, कि यहां मैं उस फ्रिक्वेंसी पे आ गया जिस फ्रिक्वेंसी पर हमारा परमात्मा हमेशा रहता है, अब कनेक्शन इजीली हो जाएगा। कहा ना, एक इधर लगाओ बैटरी को और एक इधर लगाओ पावर हाउस को। तो पहले इधर लगाओ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप, सिर्फ रट्टू तोता की तरह नहीं, वो रेडिएट करो वाइब्रेशन। आप कहेंगे मैं बहुत अशांत हूं, पहले की फाइलें पड़ी है ना मेरे पास, वो ऐप थोड़ी नष्ट होता है ओरिजिनल कभी, उसको मैं इमर्ज कर रही हूं बार बार, उस बटन को मैं चालू कर रही हूं। मैं अशांत चाहे कितनी भी क्यों नहीं हूं, अंधेरा चाहे कितना भी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर मुझे पता है यहां लाइट का बटन है, लाइट लगी है, तो मैं क्या करूंगी, अरे अरे मैं अब भी दिखाता हूं आपको लाइट करके, कितना भी अंधेरा क्यों नहीं, हम कितने ही अशांत क्यों नहीं हो, कितने ही टेंशन में क्यों नहीं हो, लेकिन ये मेरा फेथ कि मेरा शांति का ऐप तो मेरे पास है ना, चलो मैं उसको चालू करता हूं। तो इस विश्वास के साथ, उस फीलिंग के साथ आप अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी पर लेके आओ, कहो मैं हूं शांत स्वरूप, मैं कोई धोखा नहीं दे रही अपने आप को, अशांत होते हुए भी कहूं मैं शांत हूं, ये धोखा नहीं है, वो तो मैं भूल गई थी कि मेरे पास है, वो भगवान ने याद दिलाया। तो उस फ्रिक्वेंसी पे आके फिर कहा वो दूसरा छोर उधर जाएगा, मैं किसकी संतान हूं, परम पिता परमात्मा की संतान हूं, वो पिता परमात्मा भी मेरी ही तरह पॉइंट ऑफ लाइट, लाओ उस छवि को पॉइंट ऑफ लाइट, उस पॉइंट ऑफ लाइट से प्रकाश की किरणें निकल रही है, ये मेरे पिता है जिसको आज दिन तक मैं सर्वशक्तिवान प्रेम का सागर अपने आप से बहुत ऊंचा और अपने आप को बहुत कम समझ के याद कर रहा था, अब तो ये मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूं, मेरा हक है उसके सानिध्य में बैठने का, उसके सानिध्य में बैठकर उस पिता से जो लगातार प्रेम और खुशी की आनंद और शक्ति की किरणें निकल रही है उसका रसपान करने का मेरा अधिकार है, मैं बैठ जाऊं उसके पास। आहा, पिता की सुंदर छवि कितनी मनोहारी, इसमें से निकलने वाली किरणें मुझ आत्मा को स्पर्श करती है और मैं आत्मा प्रेम में मगन, पिता की शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही है और मैं आत्मा चार्ज होती जा रही हूं, शक्तिशाली बनती जा रही हूं। ओ बाबा, आपके सानिध्य में बैठने मात्र से कितना सुकून मिलता है, आपके सानिध्य में बैठने से दुख दर्द गम सब भूल जाते हैं, आखिर आपकी किरणों में वो ताकत है, वो मेरे अंदर भरती जा रही है, और मैं आप जैसा स्वयं को प्रेम स्वरूप शक्ति स्वरूप अनुभव कर रहा हूँ। हे बाबा, अब तो मैं सदा आपके साथ रहूंगा। बाबा, इस दुनिया के अंदर, इस ड्रामा के अंदर एक्टर के रूप में मुझे जो रोल मिला है, जो कॉस्ट्यूम पहना है, जो जिम्मेवारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें बाबा मैं अब आत्मा की मूल क्वालिटीज को ही वाइब्रेट करूंगा, क्योंकि अब मैं चार्ज हो गया हूं आपसे। और महसूस करें अपने आप को, पिता परमात्मा, अब तो मेरी हर एक्ट में आप मेरे साथ होंगे। बाबा, आपकी किरणों की छत्र छाया एक हाथ का रूप लेकर मेरे ऊपर आशीर्वाद के रूप में मुझे आशीर्वाद दे रही है। मैं कितना खुश नसीब हूँ। दुनिया जिसको याद कर रही है वो पिता मेरा है। मैं उसके सानिध्य में, उसका आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पे, उसकी छत्र छाया मेरे सिर पर, तो मैं तो जीवन में सेफ और सुरक्षित भरपूर हूँ। थैंक यू बाबा, मैं तो बिछड़ गया था आपसे, आपने मुझे अपने पास उंगली पकड़ कर लाया। अब इस उंगली को आप मेरी पकड़ के रखना, क्योंकि मैं अभी भी छोटा बच्चा हूँ। कब मेरी उंगली छूट जाएगी मुझे नहीं पता। बाबा, आपको मेरी उंगली पकड़ना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। और कर्म क्षेत्र में आ जाओ। 5-5 मिनट का अभ्यास, आप महसूस करेंगे कि अब मेरी जीवन बदल चुकी है। यहाँ पे जो फीलिंग होती थी, अब कैसी भी परिस्थितियां क्यों नहीं है, यहाँ टेंस्ड नहीं फील कर रहा हूँ। यहाँ एक सुकून महसूस है, एक शांति है, एक प्रेम की अनुभूति है, एक शक्ति की अनुभूति है। क्योंकि जब बैटरी बहुत डिस्चार्ज होती है और कारोबार बहुत है, तो हम 5-5 मिनट चार्ज करके उठा लेते हैं, फुल चार्ज तक हम नहीं रुक पाते। तो ये बैटरी भी काफ़ी डिस्चार्ज है, तो मैं सोचूं मैं घंटा भर बैठूं, पूरा 24 घंटा बैठ के, वो प्रोसेस नहीं है ये। तो 5-5 मिनट में भी, दिन भर में, इसीलिए देखो यहाँ बीच बीच में गीत बजते रहते ट्रैफिक कंट्रोल कि ज़्यादा देर, क्योंकि और अभी नए हैं ना, तो जल्दी फिसल जाते, तो लंबा टाइम भी नहीं कर पाएंगे। तो 5-5 मिनट। और हाँ, अमृत वेला, नुमाय शाम का समय, जैसे लौकिक में भी कारोबार तो दिन भर करते हैं, लेकिन वो खास समय कुछ फ्री भी तो रहते हैं ना, तो ऐसे वो समय कुछ फ्री रखें कि ताकि उसमें मैं कुछ बैठकर, सिर्फ 5 मिनट नहीं, 10-15, ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाता है। और आप देखते हैं कि कैसे यहाँ पे सभी इकट्ठे होते हैं, 45 मिनट्स अच्छे से हो जाते हैं, वो आदत पे निर्भर करता है। तो धीरे धीरे आदत बढ़ाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमात्मा हमारे जीवन के हर पहलू में हमारे साथ होगा, तभी तो उसको हमने गाया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। एक एक रिश्ता कहाँ तक गिनाओ, तुम मेरे सब कुछ हो। तो दुनिया के इस रंगमंच पर कभी किसकी आवश्यकता होती, कभी किसकी, पहले उसको बुला लो। तो हमेशा गाइड भी करते रहेगा, एनर्जी भी देते रहेगा, और आपके अंदर जो निगेटिविटी भरी है वो अपनी पावरफुल किरणों से उसको नष्ट भी करता रहेगा। ठीक है, ओम शांति। क्योंकि आज आपको साइट सीन के लिए भी जाना है, तो नाश्ता भी करना होगा। ठीक है, ओम शांति। और कल फिर, हाँ, साइट सीन के लिए तो कुछ एक जाएंगे, सभी नहीं जाएंगे, सभी तो 4 बजे जाएंगे, तो जिन्होंने नहीं जाना उनके लिए 10 बजे यहाँ आएंगे, 10 से 10:30 क्लास होगी, सॉरी योग होगा, और 10:30 से 11:30 के बीच में डॉक्टर निर्मला दीदी, जिनका टॉपिक रहेगा साक्षी दृष्टा स्थिति, फिर 11:30 बजे ब्रेक होगा और फिर जैसे ट्रैफिक कंट्रोल यहीं आके करेंगे और 12 से 1 के बीच में हमारे पास होंगे आत्म प्रकाश भाई जी, उनका टॉपिक होगा बैलेंस से ब्लेसिंग, और उसके बाद आप भोजन के लिए जाएंगे और फिर तो आपके पीस पार्क पिकनिक है, वहीं से रात्रि सुखधाम में भोजन करने जाएंगे और फिर इस हॉल में 8:30 बजे आएंगे, 8:30 से 9:30 क्वेश्चन आंसर सेशन पैनल के रूप में, ठीक है। रामनाथ भाई होंगे, हमारी गायत्री बहन भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, तो बारी बारी से जो आपके क्वेश्चन हैं उनका उत्तर देंगे। तो आप अपने क्वेश्चन जो भी हो ज्ञान योग से रिलेटेड प्रमोद भाई को दे देंगे। ओम शांति। कल का सेशन सुजाता बहन आके कराएगी, तो आपका हो गया आत्मा परमात्मा योग, क्योंकि आप तो किया हुआ है ना, जस्ट डेप्थ चाहिए थी आपको इसकी, तो आत्मा परमात्मा योग को हमने रिवाइज करा दिया। बाकी लाइफ स्टाइल से संबंधित और भी कुछ बातें कल हमारे बीच में आपके बीच में डॉक्टर सुजाता होगी, ठीक है। ओम शांति।